ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। निजामती आयन प्रहरी समायोजन और विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र जारी करने के पक्ष में है संसद। सभामुख देवराज घिमरे का कथन। सहकारी धोखाधड़ी के सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने की गृहमंत्री रमेश लेखक की प्रतिबद्धता। सूखे मौसम में बिजली आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि जलाशय वाली परियोजनाओं को किया जाए प्राथमिकता के साथ लागू। और अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार कंपनियों पर लगाया है प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। सभामुख देवराज घिमरे ने कहा है कि विद्यालय शिक्षा निजामती आयन और पुलिस समायोजन विधेयक को जल्द से जल्द लागू करने के पक्ष में संसद है। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान और गैर सरकारी संगठन गवर्नेंस लैब द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्रीय एवं स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास विषय पर आज आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये विधेयक संघीय शासन प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए अपरिहार्य है। सभामुख घिमरे ने कहा कि संघीयता की शुरुआत होने के साथ सरकार के तीन तहों के कार्य का दायरा संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। राजनीतिक प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारों का विवरण किया गया है। उसी के हिसाब से तीनों तह नीति निर्माण और उन्हें लागू करते हैं। देश के दीर्घकालीन विकास के साझा उद्देश्य प्राप्त करने के हिसाब से काम किया जा रहा है। संघीयता से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देते हुए उन्होंने टिप्पणी की कि संविधान के कार्यान्वयन के एक दशक के करीब आने के संदर्भ में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर चर्चा स्वाभाविक है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में संघीय निजामती सेवा के गठन संचालन और सेवा शर्त संबंध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक के संशोधनकर्ता सांसदों से आज भी विचार विमर्श हुआ। समिति की आज हुई बैठक में संशोधनकर्ता सांसदों ने इस बात पर जोर दिया है कि ऊपरी स्तर पर कर्मचारियों को पदोन्नति देते समय खुली प्रतिस्पर्धा का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। सांसदों ने इस बात पर जोर दिया है कि काम के आधार पर कर्मचारियों के पारदर्शी मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मचारियों को उनके काम के प्रति जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। स्थानांतरण और पदोन्नति की व्यवस्था की जानी चाहिए और काम पर जाने वाली की व्यवस्था को हटाकर काम पर जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। सांसदों ने निजामती सेवा की संरचनागत सुधार करने, संघीयता मजबूत बनाने के हिसाब से कानून बनाने, निजामती सेवा विधेयक के प्रस्तावना में ही समानुपातिक समावेशी के सिद्धांत को उल्लेख करने की बात पर जोर दिया है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि देश के कानून के अनुसार सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सरकार आपराधिक गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज काठमांडू में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सहकारी धोखाधड़ी के सभी आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में धोखाधड़ी करने वाले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा जल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा रखे गए लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निर्देशक से विचार विमर्श किया है। आज मंत्री खड़का ने मंत्रालय में प्राधिकरण के नेतृत्व का लंबा अनुभव रखने वाले पूर्व कार्यकारी निर्देशक के साथ सूखा मौसम के दौरान भारत से बिजली आयात करने के कारणों और इसके समाधान पर विशेषज्ञों की राय ली है। उन्होंने बिजली लीकेज पर नियंत्रण, बिजली बकाया की वसूली तथा प्राधिकरण के सुधार एवं आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जा सकता है, इस बात पर भी सुझाव मांगे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि देश के संकट को सुलझाने के लिए देश की दो प्रमुख पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है। आज लमजुंग के कुहोला सुथार गांव पालिका के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री गुरुंग ने कहा है कि चूंकि देश स्थिर सरकार और अस्थिर राजनीति के कारण खोखला हो गया है, इसलिए उस संकट से उबरने के लिए कांग्रेस और एमाले ने मिलकर सरकार बनाई है। मंत्री गुरुंग ने दावा किया कि मौजूदा सरकार की प्राथमिकता सुशासन है। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा है कि दलित समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए छुआछूत और भेदभाव से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत की विकास आर्थिक मामला तथा सुशासन समिति में हुई चर्चा में मंत्री गुप्ता ने ये बात कही। समिति की अध्यक्ष कमला देवी पंत ने कहा कि राज्य को दलित के मुद्दे पर संवेदनशील होना चाहिए। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा कल नेपाल भारत आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगी। परराष्ट्र मंत्री के सचिवालय के अनुसार मंत्री डॉ राणा भारत के नई दिल्ली में आयोजित होने वाले सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। इसके बाद मंत्री डॉ राणा नई दिल्ली में नियमित स्वास्थ्य जांच करेंगे। यूरोप में कुछ कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद मंत्री डॉ राणा आज जर्मनी के बर्लिन से नई दिल्ली पहुंचे हैं। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने सिंहदरबार स्थित वैद्यखाना में आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने आज मेडिकल क्लिनिक की चिकित्सा उत्पादन स्थिति की निगरानी करते हुए मेडिकल क्लिनिक के कर्मचारियों से कहा कि बाजार में मेडिकल क्लिनिक की दवा की मांग है, उत्पादन बढ़ाएं। जब मंत्री पौडेल ने बाजार में सिंह दरबार वैद्यखाना से दवाएं खरीदने की कोशिश की तो ठेकेदार ने आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध नहीं कराया। वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ठकुरी ने कहा है कि उनका मंत्रालय वनों को समृद्ध से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वन मंत्रालय के संयोजन और खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से आज काठमांडू में आयोजित राष्ट्रीय नीति संवाद में मंत्री शाही ने कहा कि वनों से संबंधित लोगों के हितों में बाधक कानूनों में संशोधन कर लोगों को समृद्धि से जोड़ा जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पूर्वाधार निर्माण और सेवा विस्तार के क्षेत्र में स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ़ाते ले जाने पर जोर दी है। त्रिभुवन विश्वविद्यालय और चीन के सिचुआन विश्वविद्यालय अंतर्गत चाइना सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के संयुक्त आयोजन में आज से पोखरा में शुरू हुए फेवा संवाद के उद्घाटन के दौरान पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि देश के अर्थतंत्र वृद्धि और विकास निर्माण में लगानी बढ़ाते जाना होगा। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री नवल किशोर शाह सूरी ने कहा कि 21वीं शताब्दी महिला का शताब्दी है, इसलिए उन लोगों को अगाड़ी बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। आज प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के महिला तथा सामाजिक मामला समिति की बैठक में मंत्री सूरी ने कहा कि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए प्रतिबद्धता को जैसे भी पूरा करेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल चार कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बयान दिया है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के लंबी दूरी की मिसाइलों के कार्यक्रम और उनके खतरों के मद्देनजर कार्यकारी आदेश के तहत चार पाकिस्तानी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका ने जिन चार पाकिस्तानी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फिलेट्स इंटरनेशनल और रॉकसाइड इंटरप्राइज शामिल है। भारतीय सेना ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकवादी मारे गए हैं। भारतीय सेना ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन कादर के तहत चलाए गए अभियान के दौरान हुई गोलाबारी में 2 सैनिक घायल भी हुए हैं। उनका इलाज किया जा रहा है और ऑपरेशन जारी है। कश्मीर पुलिस ने भी अपने एक्स हैंडल के जरिए 5 चरमपंथियों के मारे जाने की पुष्टि की है। गुरुवार की सुबह ही भारतीय सेना ने कुलग्राम में चरमपंथियों की मौजूदगी के मद्देनजर ऑपरेशन कादर चलाने की जानकारी दी थी। अब मौसम। अब अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निजामती आयन, प्रहरी समायोजन और विधेयक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र जारी करने के पक्ष में है सांसद सभामुख देवराज घिमरे का कथन। सहकारी धोखाधड़ी के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की गृहमंत्री रमेश लेखक की प्रतिबद्धता। सूखे मौसम में बिजली आपूर्ति की समस्या को हल करने के लिए विशेषज्ञों का सुझाव है कि जलाशयों वाली परियोजनाओं को किया जाए प्राथमिकता के साथ लागू। और अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में शामिल 4 कंपनियों पर लगाया है प्रतिबंध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।